बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 15 जुलाई, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बिहार में बढ़ रहा है सियासी पारा। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के परिवार पर सीबीआई के शिकंजे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग हो रही है। कल जेडीयू ने विधायकों की बैठक बुलाई है। बिहार में क्या ये है सिद्धांत की लड़ाई या फिर दो नेताओं के अहम की? क्या बच पाएगा बिहार का सत्तारूढ़ महागठबंधन? बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत प्रशासित कश्मीर के त्राल में हुई एक मुठभेड़ में 3 चरमपंथियों की मौत हो गई है। सेना और पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान के दौरान ये चरमपंथी संतूरा गांव के एक घर में छिप गए थे। त्राल श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कानून व्यवस्था की स्थिति और अमरनाथ यात्रियों के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कश्मीर घाटी में शांति स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। बिहार के सत्ताधारी गठबंधन में तनाव की खबरों के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। विपक्ष तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद से इस्तीफा देने का दबाव बना रहा है। महागठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने भी उन्हें अपनी स्थिति साफ करने को कहा है। उधर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव का कहना है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। जनता दल यूनाइटेड ने कल पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगान ने तख्तापलट नाकाम होने के पहला साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर पश्चिमी देशों की आलोचना की है। एर्दोगान ने कहा है कि तख्तापलट के नतीजे देखने का इंतजार कर रहे देशों ने जो धोखा दिया है उसके बारे में कोई मीठी बात नहीं की जा सकती। उन्होंने एक अखबार में लिखा कि उनमें से कुछ ने फतेह उल्लाह गुलेन के सहयोगियों को शरण दी हुई है। तुर्की गुलेन को तख्तापलट की कोशिश का मास्टरमाइंड बताता रहा है जिससे वो इनकार करते रहे हैं। एर्दोगान ने एक साल के दौरान बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों की आलोचनाओं को भी खारिज किया। अंकारा की एक रैली में एर्दोगान ने कहा,
What we doing? We're actually saving Turkish democracy, Turkish rule of law.
वो पूछ रहे हैं कि कितने लोगों को काम से बर्खास्त किया गया है, उनका गुजारा कैसे होगा, उन्हें निजी क्षेत्रों में काम करने दिया जाए, हम इसकी परवाह क्यों करें, हम उनके बारे में क्यों सोचेंगे, उन्हें निजी क्षेत्रों में काम क्यों करने दिया जाए, क्या सरकार उनकी देखभाल करेगी? सरकार ने उनकी एक बार देखभाल की और उन्होंने राज्य को धोखा दिया। ये थे रेचेप तय्यप एर्दोगान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शीत युद्ध के दौरान की नीतियों पर लौटने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने क्यूबा की यात्रा करने वालों पर कड़े प्रतिबंध का ऐलान किया है। क्यूबा की सेना के साथ व्यापारिक लेन देन को लेकर भी कठोर नीति बनाई गई है। इस नीति के ऐलान के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में कास्ट्रो ने कहा, दबाव या किसी अन्य तरीके से हमें तबाह करने की कोई भी रणनीति नाकाम हो जाएगी। क्यूबा और अमेरिका के बीच साझेदारी हो सकती है, अपने विरोधाभासों का सम्मान करते हुए और एक दूसरे के लोगों की भलाई के कामों को आगे बढ़ाते हुए वो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन क्यूबा अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता करेगा ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए। ये थे राउल कास्ट्रो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आइवरी कोस्ट से मिली रिपोर्टों के मुताबिक दो शहरों अबिजान और कोरहोगो में सेना के शिविरों में गोलियों की आवाज़ सुनाई दी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कोरहोगो में 3 लोगों की मौत हुई है। घटना के कारणों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। आइवरी कोस्ट में इस साल सेना के अंदर कई समूह विद्रोह कर चुके हैं। आइवरी कोस्ट में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर बनी हुई है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। नंबर आपके लिए फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। नीतीश और लालू, ये वही जोड़ी है जिसने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी के विजय रथ को एक साल बाद 2015 में बिहार विधानसभा चुनावों में आगे नहीं बढ़ने दिया था। तब 1970 के दशक के संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण के दो तारे नीतीश कुमार और लालू यादव ने अपनी दो दशक पुरानी दुश्मनी को भुलाया, मोदी को भारतीय जनता पार्टी से टकराने के लिए हाथ मिलाया। लेकिन दो साल के भीतर ही बिहार में सियासी हालात ऐसे हो गए हैं कि लगता है कि नीतीश और लालू राहें क्या उनकी जुदा हो रही हैं। कार्यक्रम में पटना से शामिल हो रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, साथ ही इस कार्यक्रम में आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा को भी शामिल होना था, मगर वो आकस्मिक वजहों से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं, पटना चलते हैं, जहां पर अपने सहयोगी नीरज सहाय को हम शामिल कर रहे हैं। तो नीरज, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि गठबंधन को लेकर किस तरह की राजनीतिक उठापटक हो रही है, आपके बाद फिर अजय आलोक के पास चलेंगे।
देखिए मोहनलाल जी, आज के घटनाक्रम को मैं बता दूं तो आज सुबह की जो शुरुआत हुई है वह इसी कयास के साथ हुई है कि आज डी डे होगा, आज जनता दल यूनाइटेड कोई निर्णय लेगा, लेकिन यह भी कयास ही निकला। शाम तक ऐसी कोई भी पुख्ता कुछ कदम नहीं उठाया गया। वहीं आज एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई जो कि सरकारी कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली, जहां की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा था। इसके उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को भी आना था, लेकिन वो नहीं आए। फिर उसके बाद कार्यक्रम के शुरुआत होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी बदल ली, उनके बगल में राजद कोटे के मंत्री विजय प्रकाश बैठे थे और इससे भी काफी कुछ उन्होंने कुछ इस घटना के बाद काफी कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि दोनों दलों के बीच में तल्खी की। कार्यक्रम के बाद फिर जदयू के पूर्व मंत्री श्याम रजक का एक बयान आता है कि लालू प्रसाद बुजुर्ग हो चुके हैं, बुजुर्गवियत में किस सोच से इस तरह के सलाह दे रहे हैं, यह उनसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इस पर मैं आज राजद कार्यालय में भी गया था, लेकिन इस पर इस श्याम रजक की इस टिप्पणी का उत्तर मुझे किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया। और सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा सकता है, या जैसा जानकार बता रहे हैं, कि राजद के प्रवक्ताओं को शीर्ष नेतृत्व से ही यह इंस्ट्रक्शन है कि वो कुछ ना बोले, हाँ, संयम बरतने के नाम पर वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड ने जो एक प्रेशर बनाया है केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद, उस प्रेशर के बाद पार्टी, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल, वो दबाव में आ गई है, यह दिख रहा है।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज सहाय। तो बिहार में राजनीति जारी है। अजय आलोक जी, आपके पास आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के आप प्रवक्ता हैं, आपको हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। हमने आज का घटनाक्रम सुन लिया, ये आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के महागठबंधन के जिंदा रहने की शर्त क्या है? आपकी टेलीफोन लाइन खराब हो रही है जी।
जिंदा रहना, गठबंधन का जिंदा रहना या दौड़ना या चलना, ये सिर्फ जनता दल यू की जिम्मेदारी नहीं है। इस महागठबंधन में शामिल तीनों दलों की इक्वली जिम्मेदारी है कि इस गठबंधन को फलता फूलता खिलता रखें, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि महागठबंधन की साख पे आंच नहीं आनी चाहिए, और खासकर उस महागठबंधन की जिसको लीड नीतीश कुमार कर रहा है, जिनका करप्शन के मामले में बिल्कुल साफ नजरिया है कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं।
अगर जीरो टॉलरेंस रखते हैं तो फिर मतलब आरजेडी से पहले ही नीतीश को गठबंधन नहीं करना चाहिए था?
नहीं, देखिए, हमने राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन किया था, न कि किसी व्यक्तिगत आदमी से। दलों का गठबंधन होता है, आदमियों का गठबंधन नहीं होता है। और आज जब गठबंधन के एक घटक दल के शीर्ष नेता जो सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उन पर सीबीआई एफआईआर करती है, तो स्वाभाविक है हमारा ये कहना कि आप सार्वजनिक पद पे बैठे हुए हैं, जनता के प्रति एक जिम्मेदारी है, और जनता में जो परसेप्शन लोक अवधारणा जो है बनी है, उसके बारे में आपका स्पष्टीकरण तथ्यों के साथ आना जरूरी है। तो हम क्या गलत कह रहे हैं? ये काम भी
जी मानिए कि भाई आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जब महागठबंधन बन रहा था तो इसमें तमाम ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अभियोग हैं, कुछ पर मामले चल रहे हैं, सीबीआई की सिफारिशें चल रही हैं, जांच चल रही हैं, तो मामला भ्रष्टाचार का तो दिखता नहीं है।
मामला बिल्कुल भ्रष्टाचार का दिखता है, क्योंकि महागठबंधन जब बना, दल जब बना, दल में सरकार जब बनी, तो सरकार के जो मंत्री थे, किस मंत्री पे कोई भी मुकदमा चल रहा था? किसी पे नहीं। और हम नीतीश कुमार का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मंत्रिमंडल के सदस्यों पर जब भी कोई मुकदमा या एफआईआर हुआ, हमेशा इस्तीफा दिया गया है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए।
जांच का मतलब दोषी नहीं होता है ना, दोषी तो नहीं करार दिया गया?
बिल्कुल दोषी हम कहा कह रहे हैं।
तो सिर्फ जांच के नाम पर मतलब इस्तीफे की मांग करना या फिर राजनीति करना?
हमारा ये मानना है कि आप पद पे हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, और आप पद पे हैं जब वहां पे आपने गोपनीयता की शपथ ली हुई है, वहां पे अगर आप पे एफआईआर होता है किसी भी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, तो उस मामले में स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है तथ्यों के साथ। राजनीतिक मुकदमे राजनीतिक व्यक्तियों पे होते रहते हैं, उससे इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर एफआईआर होता है तो ये गंभीर विषय है।
चलिए, मैं आपको रोक रहा हूँ और कार्यक्रम में हम एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं और हम चल रहे हैं राजीव रंजन जी के पास, जो कि अरुणाचल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। राजीव रंजन जी, आपको क्या लगता है इस गठबंधन की राजनीति क्या है और क्या किस तरह से देखते हैं इसे आप?
हाँ, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड की पार्टी लाइन क्या है ये समझ से बाहर है। और जहां तक हमारे माननीय प्रवक्ता ने ये कहा कि हमें हमेशा तथ्य और परसेप्शन, तथ्य के आधार पर ही परसेप्शन बनाने चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि तेजस्वी यादव तो हमेशा डंके की चोट पर अपनी बात करने वाले हैं, हमेशा है तो सुशांत सिंह बाबू नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करने उनके खिलाफ बोलते रहे हैं। आज जब सारी जनता को, बिहार की जनता को विशेषकर, यह उम्मीद थी कि वह सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहेंगे, वह अनुपस्थित हुए, तो इससे हमारा जो परसेप्शन, एक पब्लिक का जो परसेप्शन है वो इनके खिलाफ जाता है। दूसरी बात है कि नीतीश जी चाहे जिस भी मजबूरी में हो, उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को साफ कह रखा है कि आप किसी भी स्थिति में महागठबंधन को टूटने न दें, क्योंकि अब तक जितनी बातें हैं तो आ रही हैं, जिस भी मीडिया के माध्यम से आ रही है उसमें यही हो रहा है कि तेजस्वी को बचाने की मुहिम में जुटी हुई है जनता दल यूनाइटेड।
जनता दल यूनाइटेड जुटी हुई है उनको बचाने में, आप ये कह रहे हैं?
हाँ जी, मैं यह कह रहा हूँ कि क्योंकि जिस तरीके से ये प्रवक्ता अपनी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा दलों से गठबंधन नहीं होता है, व्यक्ति से गठबंधन, ये कैसे संभव है कि आप है तो किसी व्यक्ति को छोड़ करके सिर्फ दल से गठबंधन करें, जबकि व्यक्ति पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो?
जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। अजय आलोक जी आपको सुन रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। जी अजय आलोक जी, ये जो हमारे राजीव रंजन साहब हैं जो कि ईटानगर से जुड़े हुए हैं, इनकी बात आप सुन रहे होंगे, क्या जवाब देंगे आप?
नहीं, इनको मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार, हमने ना आज तक किसी को बचाने का काम किया है, ना किसी को फंसाने का काम किया है। अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उन आरोपों का जवाब वो खुद देते हैं और न्यायालय तय करता है, सरकार या नीतीश कुमार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। इसे जनता दल यू कहीं से भी तेजस्वी यादव को बचाने का प्रयास कर रहा है, ये बड़ा हास्यास्पद है।
जी राजीव जी, आपको आवाज आ रही है?
हाँ, मुझे आ रही है। मैं इसी जवाब की उम्मीद कर रहा था कि ये इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि साफ साफ अगर ये बिहार की जनता को हमें मैसेज देते हैं कि हम है तो गठबंधन किन शर्तों पर रखे थे, किन शर्तों पर हमें इसे चलाए आगे भी चलाए रखना है, अगर ये साफ करते हैं, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, दोषी करार दिया जाता है, वो बात की बात है, लेकिन जिस नैतिकता के आधार पर अभी है तो आरोप होने पर यह मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव को कम से कम अपना पक्ष तो रखने के लिए सामने आना चाहिए, वह स्पष्टीकरण भी नहीं आ रहा है। इतनी नानुपुर के बाद जब महागठबंधन अपनी अपनी शर्तों से पीछे हट रहा है
जी।
तो हम कैसे कह सकते हैं कि महागठबंधन को है तो यह जरूरी है कि वह है तो आगे भी है तो उनके साथ संबंध को कायम रखे।
जी राजीव रंजन जी, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय आलोक जी, आपके पास वापस आ रहा हूँ, और आपके पास जब हम पहुँचते हैं तो टेलीफोन की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है। आपने राजीव रंजन जी की बात सुनी और ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए, ये महागठबंधन चल रहा है या नहीं चल रहा है? कल आप लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है।
नहीं, कल की बैठक तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, परसों राष्ट्रपति जी का चुनाव है, तो विधायक दल की बैठक उसी पे कॉल हुई है, और आज की तारीख में महागठबंधन तो चल रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, महागठबंधन को चलाने की जिम्मेदारी
इस खींचातानी के साथ,
हाँ खींचातानी के साथ महागठबंधन तो अभी तो चल रहा है, आगे अच्छे से चले, सुचारू ढंग से चले, इसकी जिम्मेदारी तीनों दलों की है। अकेले जनता दल यू के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते हम, क्योंकि महागठबंधन जब बना था तो बिल्कुल कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म पे बना था, और उसमें जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन बिल्कुल मेंशन था, जिसको खुद तेजस्वी यादव ने परसों अपने बयान में कहा है कि हमारा भी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है। तो जब आपका भी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, हमारा भी है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? फिर आइए स्पष्टीकरण दीजिए तथ्यों के साथ।
जी मंगेश तिवारी हैं, मंगेश तिवारी ये कह रहे हैं कि अब हर जांच पड़ताल आरोप पर इस्तीफा अगर होने लगा तो राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर झूठे जांच पड़ताल राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातें करेंगी और सत्ताधारी पार्टी जांच एजेंसियों का फायदा गलत तरीके से उठाएंगी। मंगेश तिवारी हैं और ये जो है ये इन्होंने फेसबुक पर टिप्पणी की है। एक और टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा जंग बहादुर सिंह की, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी रणनीति का ये हिस्सा है और वो चाहती है कि 2019 में विपक्ष बिखरा हुआ रहे। एक आरोप ये भी लग रहा है कि भाई ये बीजेपी की सोची समझी चाल है। अजय जी,
अब बीजेपी की चाल है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि सीबीआई ने जो एफआईआर किया है उसमें तथ्यवार बिंदुवार जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। मुझे ये भी पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 8 से 10 प्रॉपर्टियां अटैच की हैं तेजस्वी जी के नाम पे है, तो ये बहुत गंभीर है। तो इन सब तमाम बातों पे एक तथ्यवार जवाब आना बहुत जरूरी है, यही हमारी अपेक्षा है।
जी कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
सर
जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
सर सीतामढ़ी बिहार से संजय कुमार बोल रहा हूँ।
क्या नाम बताया आपने?
संजय कुमार।
संजय जी हाँ बात रखिए।
हाँ सर, जो वॉइस चीफ मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दिए है कि मैं मुझे मुझ भी नहीं आया और मुझे छापा मारा गया था, तो उनका जो स्टेटमेंट था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सर कि वो बोल रहे हैं कि तो फिर ये चीफ वाइस चीफ मिनिस्टर के पद संभाल रहे हैं
जी।
और सर ये बात रही जो इस्तीफा देने का, तो इस्तीफा उनको दे देना चाहिए या जो मीसा भारती है उनको पहले बनाया जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री के बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के बात कर रहे हैं कि इस्तीफा दे, तो वो इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता को यहाँ पर मैं शामिल करूंगा कार्यक्रम में। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो, हाँ सर, गौरव बोल रहे, कुमार गौरव, फॉरबिसगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार से।
अच्छा आप भी बिहार से बोल रहे हैं कुमार गौरव?
हाँ सर
जी, अपनी बात रखें।
हाँ सर, ये तेजस्वी प्रसाद यादव कतई एक बढ़िया नेता नहीं है ये, हालांकि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हमारे बहुत सारे पेटिशन उनके ऑफिस में पड़े हुए हैं, वो काम नहीं करते हैं, उनको तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। और नीतीश कुमार ने ये कहा है नहीं, उनका रुझान है कि हम उनसे इस मामले में कतई हाथ नहीं मिलाएंगे और उनको जवाब देना चाहिए, ये एकदम सही फैसला है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव। अजय आलोक जी, हमारे दो श्रोता थे, दो श्रोताओं की हमने बात सुनी, जो दूसरे श्रोता थे कुमार गौरव वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये दबाव बनाने की ज़रूरत क्या है भाई? आप उनसे निवेदन भी, आपके सत्ताधारी गठबंधन के हैं, आप उनसे कहें कि आप उसका जवाब दें, आप इस्तीफे की बात कहाँ से आ गई?
हमने तो कहा जवाब देने के लिए, हमने इस्तीफे की बात नहीं कही।
तो ये फिर इस्तीफे की बात आई कहाँ से?
वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इस्तीफे की बात उन्हीं लोग के द्वारा लाई गई है,
मतलब आरजेडी कह रही है ये।
जेडी ने कल लालू जी का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई इस्तीफा नहीं देंगे, किसी को स्पष्टीकरण नहीं देंगे, हम बंदर घोंकी से डरने वाले नहीं हैं बीजेपी के। तो भाई आप सार्वजनिक पद पे बैठे हुए हैं, आप सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो उस महागठबंधन की साख कहाँ बचेगी जहाँ पे मुखिया दो नंबर के मुखिया पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं।
हाँ सर, एक इंटरप्शन है
जी।
हेलो, हाँ, ये कह रहे हैं ये दबाव नीतीश कुमार का नहीं, आम जनता का है। आम जनता के पास जैसे ही न्यूज फ्लैश हुआ या फिर रुझान आया कि क्या तेजस्वी को दे देना चाहिए इस्तीफा, हाँ दे देना चाहिए, हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, मेच्योर्ड आदमी इंटेलेक्चुअल टाइप के पर्सन हैं, हम लोगों को क्या तरक्की करता है, क्या तेजस्वी जी काम करते हैं, हम लोगों को पता है ना, क्योंकि हम लोग जमीन पे रहते हैं, हवा में तो ऐसे नहीं राजनीति करते रहते हैं।
भ्रष्टाचार की वजह से आप, भ्रष्टाचार में और सीबीआई जांच और इनके वजह से इस्तीफे की आप लोग आम जनता मांग कर रही
है? नहीं सर, मैंने ऑलरेडी पहले कहा, बहुत सारे पेटिशन ऑलरेडी उनके ऑफिस में है, बहुत सारे मेल करते हैं हम लोग, बहुत सारे फैक्स करते हैं, कहीं से जवाब तक देना नहीं है उनका।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके कामकाज की शैली ही खराब है, आप ये कहना चाहते हैं?
हाँ सर, बेशक कामकाज की शैली खराब है और भ्रष्टाचार तो है ही उनके अंदर।
जी कुमार गौरव जी, कुमार गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार की तो बात की बात दूर की बात है, उनके काम करने की शैली खराब है, वो भाई नए नेता हैं, कम उम्र के नेता हैं, राजनीतिक समझ उनमें इतनी नहीं है, तो शुरुआती दौर में जब उनको बनाया जा रहा था तो ये भी तो परिवार की राजनीति ही थी, ये भी तो दबाव ही था।
देखिए महागठबंधन जब बना था और महागठबंधन की जब सरकार बनी थी तो अपने अपने सरकार में हिस्सेदारी होती है हर दल की, तो अपने दल के हिस्सेदारी के हिसाब से उनके दल ने तय किया कि तेजस्वी यादव मंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसमें हमारा कुछ कहना नहीं था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, कौन बनेंगे, ये भी कांग्रेस का परव्यू था। अब वो मंत्री अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेट जिम्मेदारी इसकी भी मुख्यमंत्री की, तो समय समय पर मुख्यमंत्री जी कार्य रिव्यू करते रहते हैं। ठीक है, नए हैं, युवा हैं, उनमें जोश है, काम आदमी धीरे धीरे सीख जाता है, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो अभी आज के तारीख में ये है कि महागठबंधन की साख पे एक धब्बा लग गया है और इस धब्बे के साथ तो महागठबंधन नहीं चल सकता
जी। एक फेसबुक पर एक टिप्पणी है आशीष प्रताप सिंह की, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर लगे आरोप जिस तरह नीतीश कुमार उस पर रवैया अपना रहे, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं शिवराज सिंह चौहान, येदुरप्पा पर यदि आरोप लगे हैं और उस पर नीतीश कुमार का रुख देखा है? नीतीश जो है विपक्षी खेमे में रहते हुए बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। अजय जी,
भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि शिवराज सिंह चौहान या उनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या येदुरप्पा पर जो आरोप लगे हैं उस पर उनका नजरिया क्या रहता है, उनके नजरिए को हम बयान नहीं कर सकते हैं। और हम क्यों भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने लगे? भाई हमारा स्पष्ट मानना है कि हम अपनी मान्यताओं, अपने सिद्धांत पे चलने वाले दल हैं। हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी चीज हुआ, सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात आई, नीतीश कुमार ने हमेशा आगे बढ़ के सत्ता का त्याग कर दिया। सत्ता हमारे लिए,
रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के मामले में नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़ा ना?
बिल्कुल छोड़ा, उसका कारण था महागठबंधन। राष्ट्रपति उम्मीदवार एक बात जान जाइए, दलगत नहीं होता, ये पूरे राष्ट्र का होता है। नंबर एक, हमारे विधायकों को सांसदों तक पे पार्टी का व्हिप नहीं चलता है, हर विधायक या सांसद अपनी मर्जी से उसमें वोट दे सकता है। हमने रामनाथ कोविंद जी को इसलिए चुना क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों में उनका में जो बिहार में कार्यकाल था वो ऐतिहासिक अभूतपूर्व था, कभी टकराव की नौबत नहीं आई, वो एक मैच्योर्ड सुलझे हुए आदमी है। और दूसरी बात कि बिहार से पहली बार कोई गवर्नर राष्ट्रपति बनेगा तो ये बिहार के लिए सम्मान की बात है।
पहले
मैं बता रहा हूँ, इसके पहले जाकिर हुसैन बने थे तो वो उपराष्ट्रपति बने थे। जहां तक रही मीरा जी की बात, तो मीरा जी का हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन आप देखिए मीरा जी को अगर बनाना था इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार 2009 में बनाते जब जीत पक्की थी, आज 2012 में बनाते जब जीत पक्की थी, आज आप उम्मीदवार बना रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि संख्या बल आपके पास नहीं है, और संख्या बल नहीं होने के बावजूद बिहार की बेटी को उतार दिया हराने के लिए, उसके बाद कह रहे हैं बिहार की बेटी है।
राष्ट्रपति चुनाव से हम वापस आ रहे हैं आज के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार और जो तेजस्वी का मुद्दा है। कार्यक्रम में एक श्रोता को मैं शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। हेलो
जी, मैं गुफराम अंसारी बोल रहा हूँ अररिया बिहार से।
अररिया बिहार से बोल रहे हैं जी अंसारी जी।
जी सर जी, जिस तरह कुमार गौरव जी जो बोले कि वो तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात बोले। हम लोग भी नेट से फैक्स करते, ये करते, वो करते, मतलब कुछ वो उप मुख्यमंत्री हमारे राज्य के हैं तो वो मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं लेते हैं। तो वो बेकार उप मुख्यमंत्री क्यों बने रहे?
और उसका ये जो सीबीआई वाला प्रकरण है, इससे कोई लेना देना नहीं है?
सीबीआई वाला प्रकरण, वो तो कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन वो मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना सर, तो वो मतलब पूरा दायित्व नहीं निभा रहे हैं सर, यही लेके।
गुरफान अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक और श्रोता को मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
जी सर, मैं गांव बाजार पीरो भोजपुर बिहार से,
भोजपुर बिहार से
बोल रहा हूँ सर।
जी नाम फिर से बताएं।
लक्ष्मण प्रसाद शर्मा।
अच्छा, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी। जी
जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जितने भी गैर बीजेपी राज्य हैं वहाँ पर केंद्र सरकार नाना प्रकार के आरोप लगा लगा करके विपक्षी पार्टी को तबाह कर रही है। जैसे बिहार हुआ, बंगाल हुआ, जैसे ये सब जितने भी पार्टियां हैं, या आप देखिए दिल्ली का भी वही हाल हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार को जितने भी विपक्षी पार्टी है उसके साथ मिलजुल करके, एक साथ मिलजुल करके उसके समाधान को खोजना चाहिए, न कि उसमें तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहिए।
जी जी जी, आपकी बात हमने सुन ली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चूंकि आज टेलीफोन लाइनें जो हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ चल रही हैं, अजय आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। इन्होंने एक रास्ता सुझाया है जो अभी हमारे श्रोता थे। हेलो,
ये तो आइडियल सिचुएशन होती है,
मगर ये हो ना सका।
ये देखिए, ये कभी हो ना सका इस देश में, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें नहीं हो, चाहे वो किसी और की सरकारें नहीं हो, और विपक्षी राज्य सरकारों के साथ रवैया कभी भी सहयोगपूर्ण नहीं रहा, और बिहार तो हमेशा ऐसी उपेक्षा का शिकार हुआ है।
विपक्ष मिल नहीं सकता
जी,
विपक्ष मिल नहीं सकता है, अगर मिल जाए तो भाई आपके गठबंधन में दरार ही कहाँ है।
विपक्ष अगर मिल जाए तो फिर क्या बात
है। जी, एक श्रोता को और मैं शामिल करूंगा। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो
हेलो
जी, नाम बताएं।
ब्रजेश यादव हम बोल रहे हैं।
जी ब्रजेश जी, अपनी बात रखें, संक्षेप में, समय थोड़ा कम है।
बिहार में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, ये जदयू के लोग जो अब दबाव बना रहे हैं उनपे मुख्यमंत्री पद से, उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का, ये पहले तो नीतीश कुमार जी की नीति स्पष्ट नहीं है। ये कब साथ होते हैं, कब नहीं होते हैं, ये इनके नीति, इनकी नीति ही स्पष्ट नहीं है कि क्या।
चलिए हम अब हम तुरंत इनसे नीति पूछ लेते हैं कि नीतीश कुमार जी की नीति क्या है, क्योंकि समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। नीति स्पष्ट नहीं है नीतीश कुमार की, कभी दाएं जाते हैं कभी बाएं जाते हैं, करना क्या चाहते हैं?
हमारी नीति, नियत, निशान तीनों ही स्पष्ट है, और बिहार की जनता को समझ में भी आता है। हमारी एक ही नीति है कि हम भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करते। हमारी दूसरी नीति है, हम सत्ता को अपने लिए सुख का साधन नहीं मानते हैं। हम सत्ता से संपत्ति अर्जित नहीं करते हैं, हम सत्ता से अपने लिए धन अर्जित नहीं करते हैं। सत्ता हमारे लिए एक माध्यम है जनता की सेवा करने का।
ये बहुत आदर्शवादी बातें हैं अजय आलोक जी, राजनीति में कहां संभव है ये सब?
12 वर्षों में बिहार का जो कायाकल्प हुआ है ये इस बात का प्रमाण है।
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ कायाकल्प हुआ।
मुख्यमंत्री कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के थे क्या?
नहीं, सहयोगी तो थे ना।
नीतियां किसकी थी? नीतियां भी नीतीश कुमार की थी, निर्देशन भी नीतीश कुमार का था, और इसीलिए बिहार का कायाकल्प हुआ है, और वो नीतियां इसलिए बन सकी क्योंकि हम अपने आदर्श, अपने सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं।
ये बड़े यूटोपिया समाज की बात कर रहे हैं आप, राजनीति में ये कहां संभव है?
राजनीति में क्या संभव है, ये नीतीश कुमार ने करके दिखाया है।
अच्छा,
नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, तब लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा।
तब लालू जी को, लालू जी के साथ से उन्होंने रोक लिया, और अब उन्हीं लालू जी को छोड़ने की बात हो रही है।
के साथ, तो कांग्रेस के साथ हम छोड़ने की बात नहीं कह रहे, हमने तो स्पष्टीकरण मांगा है। लालू जी ने कह दिया कि हम गठबंधन को तोड़ने की पहल नहीं करेंगे, लालू जी ने कह दिया हम इस्तीफा नहीं देंगे, लालू जी ने कह दिया स्पष्टीकरण नहीं देंगे, और आप हमें कह रहे हैं कि हम छोड़ने की बात कर रहे हैं।
जी अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, कार्यक्रम हमारा समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे तमाम श्रोताओं के सवालों के आपने जवाब दिए, और मेरे ख्याल से जिस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को जितने हमारे लोग सुन रहे हैं उन्होंने भी आपके पक्ष को सुना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को हम लाना चाहते थे मगर कार्यक्रम में नहीं आ सके। मोहनलाल शर्मा को
कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें। आज तिलक राज भाटिया ने स्टूडियो संभाला। विदा, नमस्कार।